नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और वियतनाम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सक्रिय करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान जारी, मरने वालों की संख्या 260 से अधिक। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और मूसलाधार बारिश में 55 लोग लापता। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। भारत ने श्रीलंका के कच्चा तेउ द्वीप के उत्तर में एक भारतीय मछुआरे की मृत्यु पर विरोध दर्ज करते हुए श्रीलंका के राजदूत को तलब किया। और ओलंपिक में आज निशानेबाजी में स्वप्न कुसाले ने भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन्ह के साथ वार्ता की। इस वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने वियतनाम के नहा तरांग में दूरसंचार विश्वविद्यालय में वर्चुअल माध्यम से सेना सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन किया। ये भारत और वियतनाम के बीच की सहयोगी परियोजना है। भारत ने इस परियोजना के लिए $5 मिलियन का सहायता अनुदान प्रदान किया है। दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क, क्षमता वर्धन, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, समुद्री विरासत, औषधि प्लांट तथा कानूनी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रसार भारती और वॉइस ऑफ वियतनाम ने रेडियो और टेलीविजन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने ऋण सीमा समझौते तथा वियतनाम में मायसोन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की पुनर्बहाली पर समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। अपने प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध पिछले 10 वर्ष में प्रगाढ़ हुए हैं।
पिछले एक दशक में हमारे संबंधों के आयामों में विस्तार भी हुआ है और इनमें गहराई भी आई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है।
दोनों देशों के संबंधों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक आकार दिया है। श्री मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार में 85% की वृद्धि हुई है।
हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी एवं डेवलपमेंट पार्टनरशिप में आपसी सहयोग में विस्तार हुआ है। रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्रों में आपसी सहयोग को नई गति मिली है। पिछले एक दशक में कनेक्टिविटी बढ़ी है और आज हमारे बीच 50 से ज्यादा डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। इसके साथ साथ टूरिज्म में लगातार वृद्धि हो रही है और लोगों को ई वीजा की सुविधा भी दी गई है।
प्रधानमंत्री ने भारत में बुद्ध सर्किट के लिए वियतनाम के लोगों को आमंत्रित किया। श्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के युवाओं को नालंदा विश्वविद्यालय का लाभ उठाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में वियतनाम भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुक्त, खुले, नियम आधारित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए भारत वियतनाम सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर चर्चा की और भविष्य के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के कई उपाय किए। श्री चिन्ह का आज सुबह नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। श्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने राजघाट में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री चिन्ह आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने श्रीलंका के नौसैनिक जहाज के कच्चा तेउ द्वीप के उत्तर में मछली पकड़ने वाली भारतीय नाव से टकराने के बाद एक भारतीय मछुआरे की मौत पर आज श्रीलंका के राजदूत को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली में श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को आज सुबह विदेश मंत्रालय में बुलाकर घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। मंत्रालय ने कहा कि कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त आज इस मामले को श्रीलंका की सरकार के समक्ष भी उठाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने हमेशा मछुआरों से संबंधित मुद्दों से मानवीय तरीके से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है और इस संबंध में दोनों सरकारों के बीच सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटना फिर न हो। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरल में वायनाड जिले के मुंडकई रट्टामाला तथा चूरमल लाई क्षेत्रों में राहत कर्मी तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस जिले में मंगलवार को एक भयानक भूस्खलन के कारण जान और माल की काफी क्षति हुई है। राहतकर्मी प्रभावित क्षेत्रों में जमे मलबों के ढेर में दबे जीवित बचे लोगों और मृतकों की तलाश कर रहे हैं। जंगलों की सीमा से लगे पुंचरी वट्टोम क्षेत्र में जीवित बचे लोगों की तलाश जारी है। इस क्षेत्र को भूस्खलन की उत्पत्ति का केंद्र बताया जा रहा है। तलाशी अभियान के लिए खोजी कुत्तों को भी तैनात किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि अब तक 260 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं। इनमें से 90 शवों की पहचान नहीं हो सकी है। चूरल मलाई में एक नाले पर बेली पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पुल के निर्माण का कार्य आज दोपहर बाद पूरा हो जाने की संभावना है। इस बीच कोझिकोड में राहत कर्मियों ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। ये व्यक्ति पिछले रविवार को कोझिकोड के विलानगार्ड के भूस्खलन में बह गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने आज सरकार से वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की है। संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री थरूर ने कहा कि उन्होंने इस मामले में गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसे गंभीर श्रेणी की प्राकृतिक आपदा घोषित करती है तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा निर्देश MPLADS के तहत राहत और पुनर्वास कार्य के लिए 1 करोड़ रूपये का योगदान कर सकते हैं।
I have asked for it to be declared as a severe calamity because under the MP Lads funds, any MP in India, not just from that area, can donate up to 1 crore for a natural calamity once the government so declares it. That's why I have asked for this to be done. I really hope the government will heed my request.
गृहमंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात कर राज्य में बादल फटने से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री को राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती सहित केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश में कल रात 3 स्थानों पर मूसलाधार वर्षा और बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता रितेश कपूर की ये रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में बीती रात हुई मॉनसून की भारी वर्षा और बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में 3 स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं में 55 लोग लापता हैं, जबकि 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के झाकड़ी में बादल फटने की घटना में अभी तक 36 लोग लापता हैं। वहीं मंडी जिला के पद्धर के पास टिक्कन में घटित ऐसी ही आपदा में 9 लोगों के लापता होने का समाचार है, जबकि 2 लोगों के शव बरामद हो गए हैं।
उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में कल रात हुई अतिवृष्टि से 6 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य के निचले इलाकों में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है। साथ ही प्रदेश की मुख्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेज बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल रात भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। टिहरी जिले के भिलंगना विकासखंड के नौताड़ तोक में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति अभी भी लापता है। वहीं हरिद्वार जिले में मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई और 9 लोग घायल हो गए। अत्यधिक बारिश से केदार घाटी में लिंचोली के समीप जंगल चट्टी में रामबाड़ा भीमबली लिंचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मौसम विभाग ने आज देहरादून टिहरी पौड़ी चंपावत नैनीताल उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश केंद्रों पर 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण निलंबित रहेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी शहर में मूसलाधार बारिश की संभावना को देखते हुए सभी अधिकारियों से सतर्क रहने को कहा है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश किया। ये विधेयक 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम को संशोधित करने के लिए पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य को कुशल बनाना है। सरकार ने कहा है कि वो देश में रेल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में अपने मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान प्रतिवर्ष 171 की तुलना में ये घटकर औसतन 68 प्रतिवर्ष रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज बहुमत से राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के ईवी चेन्नैया के फैसले को खारिज कर दिया। ईवी चेन्नैया ने अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में ऐतिहासिक साक्ष्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें सबकी एक समान स्थिति हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसका उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 15 और 16 किसी राज्य को एक जाति का उपवर्गीकरण करने से नहीं रोकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। राज्य विधानसभा के एक वक्तव्य में उन्होंने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए लंबे दिन तक चले संघर्ष की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति सहित विधानसभा में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय में राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य हितधारकों द्वारा संग्रहालय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि आज दुनिया भर के लोग भारत को जानना और समझना चाहते हैं। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन क्वालिफाइंग स्पर्धा में कुसाले ने 7वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिफ्त कौर समरा और अंजुम मौदगिल क्वालिफाइंग राउंड में भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे अपना अभियान शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीतने पर स्वप्निल कुसाले को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह स्वप्निल कुसाले का असाधारण प्रदर्शन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका प्रदर्शन विशेष है क्योंकि उन्होंने बहुत लचीलापन और कौशल दिखाया है। श्री मोदी ने कहा कि वो इस श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। इससे हर भारतीय खुशी से भर गया है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी छमाही के दौरान पूरे देश में बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वोत्तर, लद्दाख, सौराष्ट्र, कच्छ के कई हिस्सों और मध्य तथा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य वर्षा का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल रात तेज बारिश हुई जिसमें 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सक्रिय करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान जारी, मरने वालों की संख्या 260 से अधिक। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और मूसलाधार बारिश में 55 लोग लापता। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। भारत ने श्रीलंका के कच्चातेवो द्वीप के उत्तर में एक भारतीय मछुआरे की मृत्यु पर विरोध दर्ज करते हुए श्रीलंका के राजदूत को तलब किया। और ओलंपिक में आज निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले ने भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।